नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में।
जी हाँ दोस्तों, वही कार्यक्रम जिसमें है ढेर सारा ड्रामा
और प्रवास से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ।
वैसे नरेन, जानकारियों से याद आया, आज हम अपने श्रोताओं को किस बारे में जानकारी देने वाले हैं?
अंजलि, इसकी तैयारी तो तुम्हें करनी थी ना, तो क्या खोज कर आई हो तुम आज के प्रोग्राम के लिए?
मुझे करनी थी, ये कब तय हुआ था नरेन?
अरे पिछले एपिसोड के बाद यही तो तय किया था हम दोनों ने।
ओ, तो इसका मतलब है नरेन, आज हम अपने दोस्तों को कोई जानकारी नहीं देंगे?
रुक रुको, मैं एक काम करता हूँ।
क्या?
जब तक तुम हमारे श्रोताओं को दी जाने वाली जानकारी के बारे में सोचती हो, मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ।
अपने बारे में?
हाँ अंजलि, अपने बारे में। पता है दोस्तों, मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था।
क्या?
हाँ अंजलि।
तो फिर तुमने जो ये इतनी पढ़ाई की है, ये BA, ये MA, ये सब?
मैंने ये तो नहीं कहा कि काम करने के दौरान मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
मतलब?
मतलब ये कि मैंने पढ़ाई भी की और काम भी किया।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है नरेन। नरेन।
क्या हुआ अंजलि?
नरेन, मुझे जानकारी मिल गई, वो जो हम अपने श्रोताओं को दे सकते हैं।
वो क्या?
नरेन, क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को ये ही बताएं कि वो भी काम के साथ कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
तो आज हम इसी विषय पर अपने श्रोताओं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे धारावाहिक शहर की ओर की अगली यानी कि 42वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर और गजेंद्र नौकरी के लिए प्लेसमेंट एजेंसी जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात दयाल पांडे से होती है। दयाल पांडे चंदर और गजेंद्र से कहता है कि नौकरी पाने के लिए उन्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, जिसके लिए वो उनसे 3200 रुपए भी ले लेता है। उधर हरेंद्र होली के मौके पर छुट्टी लेकर वापिस घर आता है और सभी के लिए कुछ न कुछ लाता है, जिससे घर पर सभी खुश होते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। हेलो।
हेलो, मैं चंदर बोल रहा हूँ बम्बई से।
चंदर भैजी, आप? मैं सुषमा बोल रही हूँ।
अरे सुषमा, कैसी है?
मैं ठीक हूँ चंदर भैजी, पर आप बम्बई में?
हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए बम्बई आए हुए।
चंदर भैजी, आपको तो मधु भौजी से बात करनी होगी ना। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ।
अरे नहीं नहीं सुषमा, अभी रहने दे, मधु को आने में समय लग जाएगा। तो एक काम कर, मेरा नंबर लिख ले, इसे अपनी भौजी को दे देना और कहना मुझे जल्दी ही फोन कर ले। ये मेरा नया मोबाइल नंबर है।
जी भैजी।
हाँ, नंबर है 9920646461।
ठीक है भैजी।
अच्छा मैं रखता हूँ।
जी नमस्ते।
हाँ नमस्ते।
पता है पिताजी, राजेश को समंदर बहुत पसंद है।
अच्छा?
हाँ पिताजी, चाहो तो आप राजेश से ही पूछ लो।
क्यों बेटा?
दरअसल पिताजी, ये समंदर मेरे लिए सिर्फ समंदर नहीं है, कई रिश्ते हैं इसके मेरे साथ।
समंदर के साथ और रिश्ता? बड़ी अजीब सी बात है राजेश बेटा।
पिताजी, बचपन से लेकर आज तक जब कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ, इस समंदर के साथ अपनी परेशानी बांटता हूँ, और एक पिता की तरह बड़ी ही गंभीरता से ये मेरी हर बात सुनता है। और हाँ, जब मैं खुश होता हूँ तो इसकी लहरें उछल उछल कर मेरी खुशियों में शामिल हो जाती। एक तरह से देखा जाए तो इस समंदर ने मुझे एक परिवार की तरह ही तो सहारा दिया है।
बेटा, अब तुम्हारे पास अपना परिवार है जो तुम्हारी हर खुशी हर गम में शामिल होगा, और उसके लिए तुम्हें समंदर में सहारा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है बेटा।
थैंक यू पिताजी। कविता, आप सबके बारे में बहुत बातें किया करती थी, और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। बिना परिवार के पूरी जिंदगी काटना कितना मुश्किल है, ये मेरे सिवा सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो अनाथ हैं।
खबरदार, जो तुमने आगे से इस तरह की बातें की तो।
ओके बाबा, सॉरी, पर कभी कभी भावुक होना अलाउड होना चाहिए ना।
ठीक है बाबा, ठीक है।
वैसे कविता, मुझे लगता है हमें माँ को भी यहाँ घुमाने के लिए लाना चाहिए था।
कोई बात नहीं राजेश, माँ के साथ हम एक बार फिर घूमने आ जाएंगे।
अरे बेटा, अब दोबारा कहाँ, दो दिन बाद तो हमें यहाँ से निकलना है।
लेकिन पिताजी, कुछ दिन और रुक जाइए ना।
हाँ,
अभी तो आपने मुंबई शहर देखा भी नहीं।
नहीं बेटा, वहाँ गांव में सुषमा और छोटू अकेले हैं। फिर वहाँ पहुँचकर तुम्हारी शादी की तैयारी भी तो करनी है। भगवान ने चाहा तो इस मुंबई शहर को देखने हम फिर आएंगे।
लेकिन पिताजी।
बस बेटा, तुम मेरी और कविता की माँ की परसों की टिकट बुक करवा दो।
ठीक है पिताजी, लेकिन आप शादी की तैयारियों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं और कविता वहाँ शादी से कुछ दिन पहले ही आ जाएंगे और सारा काम संभाल लेंगे।
ये तो पहली बार होगा हमारे गांव में कि बेटी और दामाद ने खुद शादी की तैयारियां की हो।
पिताजी।
ठीक है बेटा, तुम आकर तैयारियां कर लेना।
ये हो गई पूरी 40 बोतलें। अब ये जो जूस बचा है इसको।
बौजी, मधु बौजी।
अरे सुषमा, तू यहाँ कैसे?
बौजी, आप यहाँ बैठी जूस बना रही हो और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी।
क्या बात है सुषमा, कोई जरूरी काम है क्या?
अरे काम नहीं है, आपके लिए जरूरी खबर है।
मेरे लिए?
चंदर बैजी का फोन आया था।
क्या, पर तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं?
मैंने तो कहा था कि मैं बौजी को बुला लाती हूँ, लेकिन शायद वो जल्दी में थे। कह रहे थे कि ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। पर हाँ, अपना फोन नंबर दिया है और आपको इस नंबर पर फोन करने के लिए बोला है। ये लीजिए।
और कुछ कह रहे थे क्या?
नहीं बौजी, और तो कुछ नहीं बोला।
अच्छा ठीक है।
वैसे आपको पता है बौजी, माँ और पिताजी भी अभी बम्बई में ही हैं। अब तो वापस भी आने वाले हैं, आकर कविता दीदी की शादी की तैयारी जो करनी है।
अच्छा,
वैसे बौजी, चंदर भैजी बम्बई में क्या कर रहे हैं?
वो वहाँ नई नौकरी की तलाश में गए हैं।
तो बौजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे राजेश जीजाजी तो शुरू से ही बम्बई में रहते हैं, उनकी तो वहाँ काफी जान पहचान होगी, शायद वो चंदर भैजी की कुछ मदद कर सके।
हाँ अच्छा बता, तेरे पास उनका कोई नंबर है?
उनका नंबर तो नहीं है, पर हाँ कविता दीदी का नंबर है।
ठीक है, तू मुझे कविता दीदी का ही नंबर दे दे, वो उससे बात करके राजेश जी से मिल लेंगे। वहाँ दो एक लोग जान पहचान के होंगे तो मेरी भी हिम्मत बंधी रहेगी।
लाओ बाजी, मैं लिख देती हूँ। ये लो।
हाँ ठीक है।
अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ।
अरे थोड़ी देर रुकना, चाय पी कर जाना।
नहीं बाजी, देर हो रही है, अभी घर पर बहुत काम पड़ा है।
ओ माँ, एक बगत जोड़ों का दर्द, लगता है ये जान लेकर ही दम लेगा। हे माँ।
छुटकी, कहाँ से आ रही है तू?
वो मैं मीरा बौजी के साथ खेतों पर गई थी। अच्छा माँ, आपको पता है आज मैंने किसे देखा?
किसे देखा?
उमेश भैजी को।
उमेश को?
हाँ माँ, पर वो अब पहले जैसे नहीं रहे।
क्यों, क्या हुआ उसे?
अरे माँ, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से बीमार हूँ।
अच्छा, लेकिन जब वो शहर गया था तब तो ठीक ठाक था।
पता नहीं माँ, क्या हुआ होगा उन्हें।
चल अच्छा ठीक है, गांव का मामला है, थोड़ी सी तबीयत संभल जाएगी तो मैं जाकर देखाऊंगी। पर छुटकी, अब तो बड़ी हो रही है, ये तेरा इस तरह से गांव में इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। आने दे इस बार हरेंद्र को, इस बार कह दूंगी उससे तेरे लिए अब कोई अच्छा सा लड़का देख ले, ताकि तेरे भी हाथ पीले करके मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं।
क्या माँ, आप हमेशा शादी के पीछे पड़ी रहती हो।
अच्छा चल अब जा, अंदर जाकर बुआरी को कह दे कि पानी गर्म कर दे, ये दर्द से तो मेरा दम ही निकला जा रहा है।
ठीक है माँ, मैं अभी कह देती हूँ। अरे सुषमा, तू यहाँ?
हाँ, मधु बाजी से मिलने आई थी।
अरे सुषमा, तेरा सूट तो बड़ा ही सुंदर है, चाची ने बनवाया है?
अरे नहीं, ये तो कविता दीदी लाई थी बम्बई से।
तभी मैं बोलूँ, ये इतना सुंदर क्यों लग रहा है? तू बड़ी किस्मत वाली है सुषमा।
अच्छा, वो कैसे?
अरे तुझे कविता दीदी जैसी बहन जो मिली है, काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती।
अरे यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही बनाती रहेगी या अंदर जाकर पानी भी गर्म करवाएगी?
अरे बाप रे, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ सुषमा, जरा मैं बौजी को पानी गर्म करने के लिए कह दूँ।
ठीक है, मैं भी अभी जल्दी में हूँ, बैठकर फुर्सत में बातें करते हैं।
भाना भनुली प्यारी भाना भनुली आय भनुली हा तिल दारू भोला प्यारी भनुली हा तिल दारू भोला
भनुली हा तिल दारू भोला
भनुली तल सारी ल तोरे हा टप टप हिटई भनुली बण नाची गे मोरे हा तल सारी ल तोर भनुली तल सारी ल तोरे हा टप टप हिटई भनुली बण नाची गे मोरे सौ गजा की लाटुली चढ़ चढ़ी सी लागुली सौ गजा की लाटुली चढ़ चढ़ी सी लागुली तेरी लाटुलियो महा तिल धर भोला प्यारी भनुली हा तिल धरु बोला
भनुली हा तिल धरु बोला प्यारी भनुली हा तिल धरु बोला
पर भनुली बेड पाकील पर यहाँ जोन पूरा किला साक भनुली ढह जांदी कह रहे हाँ बेड पाकील पर भनुली बेड पाकील पर यहाँ जोन पूरा किला साक भनुली ढह जांदी कह रहे खन खनी हाथों चूड़ी चमकुटियों की झावरी खन खनी हाथों चूड़ी चमकुटियों की झावरी तेरी झावरी माँ तिल धर बोला प्यारी भनुली हा तिल धारु बोला
प्यारी भनुली हा तिल धारु बोला प्यारी भनुली हा तिल धारु बोला
गहना भनुली रात अंधेरी मा गहना हो धर्मा की सी जोन भनुली प्यारी भनुली को मैना हो रात अंधेरी मा गहना भनुली रात अंधेरी मा गहना हो धर्मा की सी जोन भनुली प्यारी भनुली को मैना जन पानी की अंजोली आए दिखांदी रामोली जन पानी की अंजोली आए दिखांदी रामोली मेरी रामोली हाँ तिल धर बोला प्यारी भनुली हा तिल धरु बोला
भनुली हा तिल धरु बोला प्यारी भनुली हा तिल धरु बोला
भनुली छोया छिटोंक पानी हो माया की भली सौ देर भनुली रूप की छई खजानी हो छोया छिटोंक पानी भनुली छोया छिटोंक पानी हो माया की भली सौ देर भनुली रूप की छई खजानी मेरे गोला मा बड़ूली जन जुड़ी मा गंडूली मेरी गोला मा बड़ूली जन जुड़ी मा गंडूली तेरी बड़ूलियो मा तिल धरु बोला
भनुली हा तिल धरु बोला आई भनुली हा तिल धरु बोला आई भनुली हा तिल धरु बोला।
हाँ तो नरेन, आज हम अपने श्रोताओं को बताने वाले हैं कि वो काम करते हुए अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं।
लेकिन क्यों ना पहले हम अपने श्रोताओं से पूछें कि क्या ऐसा मुमकिन है और क्या युवाओं को ऐसा करना चाहिए।
तो ठीक है, पहले हम अपने श्रोताओं से यही सवाल पूछते हैं।
पढ़ाई पढ़ाई के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा आभूषण है जिससे मनुष्य का चरित्र बना रहता है, और पढ़ाई के साथ काम करना आसान नहीं है। काम करने से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता, एक तरफ पढ़ने का प्रेशर, दूसरी तरफ काम का प्रेशर रहता है, इससे दोनों ही काम नहीं हो पाते।
पढ़ाई के साथ काम करना मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बंदे के मन में अगर एक दृढ़ निश्चय हो कि मुझे पढ़ाई करनी है और काम भी करना है, तो ये पॉसिबल है। और अगर कोई बंदा ये सोचता है कि पढ़ाई और काम करना मुश्किल है, तो ये बिल्कुल नहीं।
पढ़ाई के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पढ़ाई के साथ अगर काम सही समय पर ही हो रहा है, तो उससे आदमी ज़्यादा फायदा महसूस करता है, क्योंकि एक तो वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकता है, और दूसरा वह अच्छे काम का पता भी कर सकता है।
जी बिल्कुल, पढ़ाई के साथ काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अपने पढ़ाई का पूरा खर्चा, अपनी फीस, अपना सारा बुक्स के लिए, सारे चीज़ों के लिए खर्चा खुद निकाल लेता है, इससे उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और दूसरा ये कि पढ़ाई के साथ साथ काम का एक्सपीरियंस उसको हो जाता रहता है, और एक ना एक दिन अच्छी जगह पहुँच जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त या मेरे भाई लोग जो भी हैं, जो पढ़ाई के साथ काम करते हैं, तो वो अपने आप को एकदम शिक्षित फुल कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
वैसे नरेन, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है।
किस बात का अंजलि?
यही कि तुमने सचमुच काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की है।
ओहो अंजलि भाई, मैं दुनिया में कोई अकेला इंसान तो हूँ नहीं जिसने अपनी पढ़ाई इस तरह पूरी की हो।
मतलब
ये कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की है, और उन्हीं में से एक शख्स को आज मैं अपने श्रोताओं से मिलवाने जा रहा हूँ।
तो फिर नरेन, देर किस बात की है, मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी विश्वास भरी कहानी।
मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली में पूर्वी किदवाई नगर में रहता हूँ, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैं कॉरेस्पोंडेंस का एक छात्र हूँ। जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैं एक साउथ एक्स में एक बुक सेलर की दुकान में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वहाँ मुझे बुक्स वगैरह दिखानी होती थी, बच्चे आते थे उनको बुक्स वगैरह दिखानी होती थी, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ काम करने में। पढ़ाई और काम का संतुलन मैंने एक समय सारणी के अनुसार बनाया। मैंने एक समय सारणी बनाई और उसमें मैंने दिखाया कि इस समय मुझे यह काम करना है, इस समय मुझे पढ़ाई करनी है, और इस समय मुझे घर के भी कार्य करने हैं, क्योंकि मैं घर में बड़ा होने के नाते मुझे घर के भी कई कार्य देखने होते थे। तो इसमें मुझे काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन मैं इनका बहुत तरीके से समाधान किया, और मैं साउथ एक्स पार्ट वन में एक होम्योपैथी कंपनी में फार्मासिस्ट की जॉब करता हूँ, जहाँ पे मुझे दवाइयाँ डिस्पेंस करनी होती हैं। डॉक्टर्स जो भी दवाइयाँ लिख के देते हैं वो हम पेशेंट्स को देते हैं। और जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ाई और काम साथ में नहीं किया जा सकता, तो ये गलत चीज़ है। अगर आपके मन में एक लगन है कि मैंने पढ़ाई और काम साथ में करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इससे घबराने की बात नहीं। अपना टाइम निकालिए, पढ़ाई भी कीजिए और जॉब भी कीजिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
जाने वाला पल ये जा रहा है, नई मंजिलों को है तेरा इंतजार। ला 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 ला।
और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट काम की बात की तरफ।
दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कमाने को लेकर युवाओं पर घर वालों का दबाव पड़ता है, और युवा पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो नाइट क्लासेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं।
जी हाँ दोस्तों, नाइट क्लासेस रात के समय लगने वाली वो क्लासेस हैं जिन्हें आप ऑफिस में काम करने के बाद आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको नाइट क्लासेस के साथ साथ सप्ताह के अंत में भी क्लासेस उपलब्ध करवाती हैं।
वैसे नरेन, इन नाइट क्लासेस को ज्वाइन करने का तरीका क्या है?
वही जैसा कि आम कॉलेज को ज्वाइन करने का तरीका होता है, और साथ ही नाइट क्लासेस ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज और स्कूल की तरफ से सभी कामों में समान अवसर मिलते हैं।
लेकिन मुझे इसमें एक छोटी सी परेशानी नजर आती है।
वो क्या?
वो ये कि सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद लोग कितना थक जाते होंगे, क्या उसके बाद ये नाइट क्लासेस?
अंजलि, मेरे पिताजी कहा करते थे, मनुष्य काम की अधिकता से नहीं बल्कि समय पर काम न करने की वजह से थकता है। अगर लोग अपने काम और पढ़ाई में सही तालमेल बिठा लेना तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये मुश्किल होगा।
तो दोस्तों, ये थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
वैसे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की काम की बात, जो आप तक पहुंची है इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से।
और हमारा ये कार्यक्रम जब चले शहर की ओर आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अब खत्म हो चुका है आपका इंतजार।
जी हाँ, क्योंकि अब आ चुकी है वो घड़ी जिसने अब तक कर रखा था आप सभी को बेकरार।
जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है उस विजेता का नाम बताने का जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के जरिए जीत लिया है आज का इनाम।
तो अंजलि, कौन है हमारे आज के विजेता?
हमारे आज के विजेता है पश्चिम बंगाल के पूरन चंद्र, जिन्होंने हमें मीठापुर दिल्ली से चिट्ठी लिखी है। नरेन, पूरन चंद्र जी लिखते हैं कि आज से कुछ साल पहले घर की परेशानियों की वजह से मुझे शहर आना पड़ा, तो मैं खुद पर बीती हुई कुछ घटनाओं को बताना चाहता हूँ। गांव से तो ठीक ठाक मैं ट्रेन में बैठ गया था, लेकिन जब मुझे उतरना था तो मैं दिल्ली के बजाय शाहदरा स्टेशन पर उतर गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वहां से पूछते पूछते दिल्ली तक आ गया। तब मैंने एक ढाबे में नौकरी की। वहाँ मैं बर्तन धोता था और थोड़ा बहुत खाना बनाने में मालिक की मदद करता था। वहाँ से जो भी कमाई होती थी कुछ गांव भेजता था और कुछ रुपयों से गाड़ी चलाना सीखता था, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। गांव में मेरे पिताजी और माताजी थे और साथ ही दो भाई पढ़ रहे थे। कमाने वाला मैं अकेला था और घर की हालत बहुत खराब थी। फिर मुझे एक कंपनी में मालिक की गाड़ी चलाने की नौकरी मिली। धीरे धीरे करके मैंने पैसे जमा किए, भाइयों को भी पढ़ाया और अपनी शादी का खर्चा भी पूरा उठाया। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। आज मेरी आर्थिक स्थिति काफी ठीक है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उन्हें अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा देता हूँ। उन्हें शिक्षित करने के लिए मैं जी जान से मेहनत करता हूँ ताकि वो मेरी तरह से अनपढ़ न रहें। और आज मीठापुर में मेरा अपना एक घर भी है।
पूरन चंद्र जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक सुंदर सा ट्रैवल बैग। और श्रोताओं, पूरन चंद्र जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaharkiyor@gmail.com।
और सबसे रोचक अनुभव को मिलेगा एक आकर्षक ट्रैवल बैग।
तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
अरे नरेन, आज के संदेश कौन सुनाएगा भाई?
संदेश तो मैं भूल ही गया।
लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। दोस्तों, आपकी अपनी आवाज में संदेशों को रिकॉर्ड किया हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने। मगर उन संदेशों को सुनाने से पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ परविंदर भट्ट का संदेश, जो उन्होंने हमें भेजा है दिल्ली से। ये संदेश है उनके भाई रविंदर के लिए, जो कि श्रीनगर में पढ़ते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें और जल्द ही अपना बीएड पूरा कर लें।
परविंदर भट्ट जी, जब चलें शहर की ओर की पूरी टीम की तरफ से आपके भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके भाई जल्द ही बीएड पूरा कर लेंगे।
और अब आज के बाकी संदेश।
मेरा नाम शशि है, मैं कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम रानीखेत है। मैं रेडियो द्वारा अपनी मम्मी को कुछ संदेश भेजना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम यशोदा है, वह रानीखेत में रहती है। मैं अपनी मम्मी को ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करना और आप भी अपना ख्याल रखना। और छोटे भाई बहन हैं उनको धूप में इधर उधर घूमने मत देना। गणेश भैया और भाभी को कहना कि खेतों में मिलकर काम करें। और गणेश भैया प्लीज़ माँ का ध्यान रखना, घर में सबसे बड़े आप ही हो, सब कुछ तुमको ही देखना है। बाकी सबको मित्रों से प्यार भरी नमस्ते।
मेरा नाम ललित है, मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। मैं अपने दोस्त गणेश के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। हेलो गणेश, कैसे हो? शायद 12th के बाद मैं दिल्ली आ गया और आप गांव में हो, आपकी बहुत याद आती है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप भी मुझे मिस करते होंगे।
मेरा नाम मीनू है, मेरे गांव का नाम डांगी सौंकड़ है। मैं इस संदेशे को अपनी दादी के लिए भेज रही हूं, जो डांगी सौंकड़ में रहती हैं। दादी मैं यहां पर ठीक ठाक हूं और दादी मेरे लिए आरसे और अखरोट भेज देना। और दादी आप दिल्ली कब आओगे फ़ोन कर देना।
मेरा नाम प्रदीप है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम ढोंड है। मैं रेडियो द्वारा अपने परिवार वालों के संदेश दे रहा हूँ। मम्मी मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और नौकरी कर रहा हूँ। मेरी किसी प्रकार की भी चिंता ना करना। और मम्मी आपकी तबीयत खराब रहती है, खेतों में ज़्यादा देर तक धूप में मत रहना। और मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। और पापा चक्की का काम ध्यान से करना, पहले ही हाथ पर चोट लग रखी है, उस हाथ से भारी काम मत करना।
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा।
दोस्तों समय आ चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिवार में किसी को भी भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता हमारे नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें अपने खट्टे मीठे अनुभवों से भरी चिट्ठियां भी जरूर लिखते रहिए।
और हमारे जो प्रवासी श्रोता इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
साथ ही दोस्तों अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप वो सभी जानकारियाँ चिट्ठियों या फिर ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं।
और इसके अलावा हम अपने प्रवासी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि वो मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार करें। और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियाँ भी लिखकर हमें भेजिए। हम आपके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारियों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
आप हमारा पता भी एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों अब मुझे और नरेन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।